नमोकार मंत्र से, मंगलमय नमोकार मंत्र जो हमारे आत्मा के ज्ञानोपयोग को निर्मल बनाने में सहायक बने और अपने उपयोग को हम अपने में टिका सके, पांच दिन का यह शिविर का अवसर पूर्णतः सदुपयोग हो सके, पांच दिन तक हमने सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया है, केवल वस्त्र परिग्रह साथ में आया है। है ना कि और भी साथ लेके आए हैं? कोई भी चीज साथ में नहीं आई। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास, यही तो 10 परिग्रह है ना। इनको बहुत पीछे छोड़ करके हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 5 दिन केवल हमें आत्म साधना करना है। आत्म साधना का संस्कार सत्संग के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये 5 दिन का संस्कार जीवन भर के लिए ताज़ा रहे, जीवन भर के लिए अपने को साथ दे दें, यही सद्भावना अपने को रखना है। यह आत्मकल्याण का मार्ग पैदल का रास्ता नहीं होता। पांव से चल चल करके कहीं पहुंचना नहीं है अपने को, यहाँ पर ज्ञानोपयोग को चलाना है। ज्ञानोपयोग बहुत गड़बड़ है, उसके भीतर न सहिष्णुता है, न सहनशीलता है, न निर्विकारता है, न निष्कषायता है। गड़बड़ी किसकी है? ज्ञानोपयोग की। इसी को रास्ते पर लाने का संस्कार हमें 5 दिन तक सीखना है, तो बहुत जागृति रखना है। इसलिए नमोकार मंत्र में उपस्थित जो पंच परमिष्टि हैं, उन सारे पंच परमिष्टियों को, जिनका ज्ञान निर्विकार है, निष्कषाय है, सहनशील हैं, उस उपयोग को नमस्कार करना है। जग में रहने वाले सभी साधुओं को मेरा नमस्कार, जिनका ज्ञानोपयोग निर्विकार है, निष्कषाय रूप है, उनको नमस्कार। 3.9 करोड़ सभी साधु परमिष्टियों को नमस्कार। उस मंगल पंच पदों को याद करते हुए मंगलाचरण के रूप में अपनी आत्म साधना का कार्य, 5 दिन की यात्रा प्रारंभ करना है। उस संबंध में जानकारी पश्चात हम बताएंगे। नमोकार मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूर्णं, एषो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं पढ़मं हवई मंगलम पढ़मं हवई मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि नौ बार नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग करेंगे। अपने मन को, वचन को, काय को निर्मल बनाकर, निश्चल रखकर कायोत्सर्ग। सर्वप्रथम अपने मन को, अपनी आत्मा को हमें तैयार करना है। ये दोनों चंचल हैं, पांच दिन की इस यात्रा को विफल बनाने में यही कारण बन सकते हैं। अपनी यात्रा को सफल बनाना है, विफल होने नहीं देना है, तो सावधान हो जाए, अपनी आत्मा को संबोधना है, उसको समझाना है। क्या समझाना है? 5 दिन के लिए हमने घर छोड़ा है, छोड़े हैं कि नहीं आप सभी लोग? क्या घर को साथ ले आए हैं? घर तो छूट गया है, लेकिन घर का मोह साथ आया हुआ हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसको भी छोड़ना है। घर तो छूट गया है, उठा के नहीं ला सकते, पर घर के प्रति अनुराग, मोह, संबंध ये भीतर रहता है, इसको भी त्यागना है क्या? आप मौन हो गए? हाँ, असली घर तो यहीं पर होता है। आप जहां से आए हैं वहां असली घर नहीं है। हम उसको साथ नहीं लाए, परंतु उसके प्रति जो मोह होता है, अनुराग रहता है, उसको साथ ही लाते हैं, और यही अनुराग सब गड़बड़ करता है। ध्यान करने नहीं देगा, मौन बैठने नहीं देगा, और कोई भी कुछ कहे तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है और छटपटाने लगता है कि आपके घर की तरफ ऐसी घटना घटी, इतना कह दे कोई। अगर परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी कहा है तो देख लेना क्या परिस्थिति होती है। ऐसा यह आत्मा परिग्रहों से संस्कारित है, मोह से मोहित है, अनादिकाल से इसके ऊपर जबरदस्त मोह का संस्कार पड़ा हुआ है। इसी मोहनी कर्म का ऑपरेशन हमें 5 दिन तक करना है। आप यदि 5 दिन के लिए इस अस्पताल में एडमिट हैं तो डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा, और एडमिट ही नहीं होना चाहते हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी हमारे पास नहीं रहेगी। कितने लोगों को एडमिट होना है 5 दिन की यात्रा में, वो हाथ उठाएं, अनुमोदना करें। ऊपर भी देख रहे हैं स्टेज पर। हाँ, स्टेज पर सभी बैठेंगे। अच्छा, मोह मोहनी कर्म है, इसकी 28 प्रकृतियां हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 को ही माना जाता है, और 5वां यदि कोई है तो दर्शन मोहनी में से एक मिथ्या तो है, जो उसके भीतर सभी समाविष्ट है। सम्यक मिथ्या तो भी उसी में डाल दो, क्योंकि वह उसी का बेटा है। सम्यक प्रकृति को भी उसी में डाल दो, उसी का बेटा है। और 9 कषाय जो 9 होते हैं वे क्रोध, मान, माया, लोभ की ही संतान हैं, और इन सब को मिला करके संक्षिप्त में यदि हम कहेंगे तो राग और द्वेष ये 2 रह जाते हैं। 4 को भी संक्षिप्त करो, क्रोध, मान, माया और लोभ को, इसको भी संक्षिप्त करना चाहे तो राग में 2 कषाय डाल दो और द्वेष में 2 कषाय डालो। क्या रह गया? राग और द्वेष। एक मिथ्या तो जो हमारे लिए विपरीत बनाता है, अपने ज्ञानोपयोग को उल्टा कर देता है, उलट पुलट कर देता है, अंधश्रद्धा हो जाती है, अंधविश्वास हो जाता है गलत फहमियाँ बन जाती हैं और उल्टा सीधा सोचने लगता है, तो वह दर्शन मोहिनी मिथ्या तो कर्म हमारे ज्ञानोपयोग को जब पलटा देता है तो हमारा विश्वास उड़ जाता है। किससे विश्वास? जो सुख का रास्ता रहता है उसको दुख का समझने लगते हैं, और जो दुख का रास्ता है उसी में सुख महसूस होने लगता है। इस प्रकार से अपराध कर्म का नहीं होता। दर्शन मोहिनी मिथ्या तो कर्म के उदय से हमारा ज्ञानोपयोग पलट गया तो अपराध मिथ्यात्व का नहीं समझा जाएगा, अपराध अपना ज्ञानोपयोग का समझा जाएगा। जो हमारी कमजोरी से ज्ञानोपयोग ने उसका साथ दिया, किसका? जो अतिथि बनकर के बाहर से आया है, अनुभाग और स्थितिबंध जिसमें पड़ा है वो अतिथि है हमारा। जो बाहर से आता है वो अतिथि, और जो हमारे पास है वो हमारा परिवार का। हम आत्मा हैं, अपने आत्मरूपी घर में ज्ञानोपयोग हमारा परिवार का है, इसको हम हटा नहीं सकते, बाहर भेज नहीं सकते। यही परिवार का व्यक्ति गड़बड़ है, ज्ञानोपयोग यही आह्वान देता है, बुलाता है अतिथियों को, निमंत्रण देता है। मिथ्यात्व को निमंत्रण देने के लिए इसका ही दिमाग पहला बिगड़ जाता है, क्रोध को निमंत्रण देने के लिए इसका ही दिमाग बिगड़ता है, मान को निमंत्रण देने के लिए इसी का दिमाग पहले बिगड़ता है, माया को निमंत्रण देने वाला भी यही है, लोभ को निमंत्रण देने वाला भी यही है। ज्ञान, ज्ञान को संभालना है, ज्ञानोपयोग को संभालना है, ये हमारा परिवार का है। उसे हम कहो या हमारे परिवार का कहो, बात एक ही है। जो हम होते हैं और हम में जो होता है वो हमारा होता है। हम कौन हैं? हम कौन? आत्मा। और हमारा क्या? ज्ञान। आत्मा घर है, उस घर के भीतर एक व्यक्ति है, उसको कहते हैं ज्ञान। उस ज्ञान के दो बेटे हैं, उस ज्ञान के दो बेटे हैं, एक मिथ्या ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान। यह जिसको जन्म देता है वह बेटा उसका माना जाता है। हमारे ज्ञान ने यदि मिथ्या ज्ञान को जन्म दिया तो मिथ्या ज्ञान उसी का बेटा है। आत्मचिंतन के लिए एक एक सूत्र आपको बहुत बड़े सहायक बनेंगे। ये किसके लिए लिखना है? दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपने को समझने के लिए लिखना है। हम जब सामायिक में बैठ जाते हैं तो इन्हीं बातों को लेकर के चिंतन करें, मनन करें और अपने ज्ञानोपयोग को ठीक करें, इसके लिए लिख के रखना है। दूसरे का कल्याण इस जीव ने अनंत बार किया है, लेकिन अपना कल्याण एक बार भी नहीं किया। दूसरे का कल्याण करते करते भगवान का भी इस आत्मा ने कल्याण किया है, उनका पांच कल्याण किया है। लेकिन अपना कल्याण इसने एक बार भी करने का नहीं सोचा। इसी का नाम है संसार। जो खुद के बारे में नहीं सोचता वह आत्मा अज्ञानी की अज्ञानी, वो अज्ञानी है। जब भी कुछ कार्य करें स्वयं के लिए करें, पर के लिए भी करते जा रहे हैं तो उसको ऐसा न समझे कि मैं पर का कार्य कर रहा हूं, मैं तो अपने लिए अपना कार्य कर रहा हूं, ऐसा समझे, चिंतन करे। किसी को कहते हैं बोलते हुए भी नहीं बोलते, पर के साथ बोलते समय यदि वह पर के साथ ही बोल रहा है तो अपने में जागृत नहीं है ना। जो एक उद्देश्य लेकर के बोलना प्रारंभ कर देता है कि मैं पर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूं, तो स्वयं के लिए बोलता हुआ व्यक्ति पर के लिए बोल रहा हो तो वह स्वयं के लिए भी बोल रहा है और पर के लिए भी बोल रहा है, क्योंकि वह जागृत आत्मा है। ऐसे आत्मा को सदा मन वचन काय की प्रवृत्ति के काल में सदा जागृत रखने का नाम आत्मकल्याण है। भूल जाओ, सबको भूल जाओ, 5 दिन के लिए भूल जाओ, ये घर मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, हो भी कैसे सकता है, मेरा कहना ही झूठ बोलना है। झूठ बोला क्या? नहीं झूठ बोला। मैं कौन हूं? आत्मा। मेरा क्या है? ज्ञान। ज्ञान संपत्ति मेरी है, ज्ञान का खजाना भीतर है, केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, वह सबसे बड़ी संपत्ति है। केवल ज्ञान लक्ष्मी वैभव भीतर है, वह सबसे बड़ी संपत्ति है, वही मेरा है, बाकी और कुछ मेरा नहीं है। और अनादिकाल से हमारी आत्मा ने ही पर के वैभव को मेरा 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 कहते हुए उसके साथ मोहिनी कर्म का बंध किया है, और मोहिनी कर्म के उदय में उसका दुख, दुख का फल भी भोगा है। कर्म का बंध कब होता है? पर वस्तु को मेरा कहते समय होता है, और पर वस्तु मेरा कहने के लिए कोई ज्यादा तो है नहीं, एक ही वस्तु है, अचेतन वस्तु, पुद्गल। पुद्गल के प्रति इसको जितना प्रेम हुआ है उतना प्रेम किसी वस्तु से नहीं हुआ। अनादिकाल की दोस्ती है पुद्गल पदार्थ के साथ आत्मा की। पुद्गल के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ आज तक, सोचो चिंतन करो, हुआ है? पुद्गल के ऊपर क्रोध नहीं हुआ है, पुद्गल के प्रति मान नहीं हुआ है, पुद्गल के प्रति छल कपट नहीं हुआ है, पुद्गल के प्रति लोभ नहीं हुआ है। लोभ हुआ है अपने लिए, अपने आत्मा में, अपने अंदर लोभ हुआ है, और दूसरे चेतन जीव को लेकर के हुआ है। जब हम पुद्गल को लेकर के मान करते थे मैं इतना बड़ा धनवान करोड़पति, अहंकार आया ना, बहुत धन आने से अहंकार आया था। पर ये अहंकार इसलिए आया था, अगर कोई दुनिया में हमारे सामने दूसरा व्यक्ति न होता तो ये अहंकार भी नहीं होता। पुद्गल के कारण से अहंकार नहीं हुआ, बल्कि पुद्गल आया था, हमने टैली किया दूसरे से, दूसरे के पुद्गल से, उनके स्वामित्व में कितना है और अपने स्वामित्व में कितना है, टैली किया। और टैली करके चेतन वस्तु के कारण से हमने मान कषाय की, वस्तुतः पुद्गल के कारण से मान कषाय हमने नहीं की। दूसरा मेरे से छोटा है और मैं उससे बड़ा हूं, जब टैली किया तभी तो ये भाव आया ना। कब करोगे प्रतिक्रमण इसका? ये दोष पकड़ में ही नहीं आया है तो प्रतिक्रमण भी कैसे करोगे? अनादिकाल से पकड़ में नहीं आया। आत्मा के अज्ञात परिणामों को पकड़ना प्रतिक्रमण है, जो हमारे लिए आज तक पकड़ में नहीं आए उन परिणामों को पकड़ने का कोशिश करना, ये मान कषाय आया। तो वस्तुतः किसके वजह से आया? दो केवल ज्ञानी हैं, सबसे बड़े वैभवशाली हैं दोनों, उनके पास भी केवल ज्ञान है और इनके पास भी केवल ज्ञान है, और भी बहुत सारे केवल ज्ञानी हैं, और इन सभी केवल ज्ञानियों के सामने छोटे छोटे ज्ञानी जीव भी हैं, कोई मनःपरे ज्ञानी हैं, कोई अवधि ज्ञानी हैं, कोई श्रुत केवली हैं, इन सबको देख करके उन सारे कितने ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी अनंत हो गए अनंत काल से, उन अनंत केवल ज्ञानियों में से किसी एक केवल ज्ञानी को ऐसा भाव हो सकता है क्या कि मैं एक श्रुत केवली से टैली करता हूँ अपने ज्ञान का और अपने आप को अभिमानी समझता हूँ? करेंगे केवल ज्ञानी टैली? मान कषायी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। जिनके पास अपार वैभव होता है उनको मान कषाय नहीं होती, और जिनके पास थोड़ा वैभव होता है वहीं तो सब कुछ गड़बड़ी चलती है। अध भरी घड़ी घगरा क्या बोलते हाँ अध भर घगरी छलकत जाए, टैली केवल ज्ञानी नहीं करते, उनका घड़ा भरा हुआ है उसमें से आवाज नहीं आ सकती। परंतु जिसके पास थोड़ा ज्ञान है और वह समझदार नहीं है, विवेकी नहीं है, वो टैली करता है। अज्ञानी टैली करता है और तीन चार ग्रंथ पढ़ करके वह अपने आप को बड़ा समझता है, और जिनको एक ग्रंथ का ज्ञान है चार का नहीं है तो वो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। बड़ा अपने को बड़ा समझता है और छोटा भी कम नहीं है, वो छोटा भी अपने आप को दीनहीन समझता है, मुझे तो एक ही शास्त्र का ज्ञान है क्या करूं, ऐसा चलता है। ये समझदारी नहीं है। आत्मकल्याण के पथ पर इतनी गहरी समझ होना चाहिए कि हम कहीं कम तो नहीं हैं, कहीं अटक तो नहीं रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, इसका संशोधन कौन करेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। हम परमार्थ क्षेत्र में भी आ गए तो ये ज्ञान हमारे लिए सता सकता है, कम हो तो भी सताएगा और ज्यादा हो तो भी सताएगा। कम हो तो दीनहीन बन करके चलेगा, मेरे पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, जैसा दरिद्र हो भीख मांगने जा रहा हो ऐसा अनुभव करता है। और ज्ञान यदि बढ़ गया तो अपने आप को बड़ा साहूकार समझता है। दोनों तरफ आत्मा अपराधी है, अपने आप को भिखारी समझेगा तो भी अपराधी, अपने आप को साहूकार समझेगा तो भी अपराधी। और अपराधी आत्मा ही आटो कर्मों का बंद करता है, इसमें क्या संशय है? और अपराधी आत्मा के भीतर चार कषायों में से कोई न कोई कषाय जीवित रहती है, सदा जीवित रहती है। इन्हीं कषाय परिणामों का ऑपरेशन करने के लिए हमें अपनी तैयारी करना है, अपनी पात्रता को जागृत करके हमें पात्र बनना है। और ये ऑपरेशन हम तो आपके लिए थ्योरेटिकल के रूप में काम में आएंगे, परंतु प्रैक्टिकल कौन करेगा? स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं को डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर डॉक्टर के लिए मार्गदर्शन करेगा, डॉक्टर ही कर सकता है मार्गदर्शन, और डॉक्टर को ही कर सकता है मार्गदर्शन। जो डॉक्टर बनने को तैयार नहीं, वो डॉक्टर के पास आने की भी पात्रता नहीं रख सकता, दूर रहे उस डॉक्टर से। जो स्वयं को डॉक्टर बनने का कोशिश नहीं करता, वो डॉक्टर के पास जाने की भी पात्रता नहीं रखता। ये आध्यात्मिक रास्ता है, आत्मकल्याण का रास्ता है, इसमें अपने आप को समर्पित करना है। स्वयं के आत्मा को स्वयं के लिए समर्पित करके बाह्य जाल में से छूटकर अपने आप में आना है, केंद्रित होना है। सामायिक पाठ में अपन पढ़ते हैं, संसार कांतार निपात ही तुम, संसार रूपी जंगल में पटकाने के लिए जो निमित्तभूत साधन हैं, ये हेतु पांच हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये पांच हेतु हैं, ये संसार के जंगल में पटका देते हैं आत्मा को। सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, सारे विकल्प जालों को मैं तोड़ देता हूं और अपने उपयोग को अपने आप में समेट कर अपने में एकाग्र करता हूं, ऐसा विचार करके हम भीतर डूबते हैं ना। भूमिका बनाए, आज के दिन एकाएकी सामायिक करना नहीं आएगा, भूमिका बनाए। सबसे प्रथम भूमिका अपनी ये रहेगी कि पर वस्तु है, आत्मा आत्मा है, इतना तो समझ में आया ना। हाँ, पर वस्तु मेरी नहीं है ये कह करके संपूर्ण उसका त्याग, पांच दिन के लिए त्याग करेंगे तो क्या उस परिग्रह संबंधी मान आएगा? नहीं आएगा। उस परिग्रह से क्या हम टैली करेंगे किसी दूसरे परिग्रह से अपने परिग्रह का? नहीं कर सकेंगे ना, त्याग ही हो गया तो उधर मन नहीं जाएगा, और मन नहीं जाएगा तो फिर टैली भी नहीं होगी। टैली नहीं होगी तो तत्संबंधी मान कषाय उत्पन्न नहीं होगा। और इस तरह से हम अपने ज्ञानोपयोग को पर वस्तु से हटाने के कारण अपने आप में रहने के लिए और आने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम हमारा संकल्प रहेगा, 5 दिन के लिए हम पर परिग्रह से निवृत्त होंगे। संकल्प लेंगे आप, बिजली भी टूट पड़ जाए, 5 दिन के अंदर इस शिविर को छोड़ करके कहीं जाना आना नहीं है। ऐसा साहस हो तो ही हाथ उठा करके संकल्प करना, क्योंकि आत्म साधना तो आत्म साधना होती है। नियम परिमित कालो यावत जीवम यमो ध्रियते, श्रावक जब आत्म साधना करता है तो नियम से करता है, नियम व्रत लेकर के करता है। और मुनि महाराज जब परिग्रह आदि छोड़ते हैं तो यम के रूप में छोड़ देते हैं, जीवन पर्यंत तिल तुष्ट मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है ऐसा कह करके यम का संकल्प लेते हैं। लेकिन श्रावक परिग्रह से आश्रित जीवन जीता है, इसलिए आचार्यों ने कहा जितने परिग्रह से ममत्व का त्याग करना है उसको आजीवन पर्यंत करते हो तो यम कहलाएगा, और जितना रखते हो और जितना रखने के बाद भी उसको कुछ समय के लिए त्यागते हो, समय की सीमा से त्यागते हो, तो यह नियम व्रत कहलाएगा। नियम व्रत और यम व्रत दो प्रकार के व्रत श्रावक जीवन में आत्मकल्याण के ये दोनों साधन हैं, दो साधन है। यम के रूप में परिग्रह को त्यागना और नियम के रूप में आपने एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, किसी की 7 प्रतिमा, 5-6 प्रतिमा, 8वीं प्रतिमाधारी भी है कोई यहाँ? एक भी नहीं है। 7 प्रतिमा तक तो हैं, 7 प्रतिमाधारी कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ 11 लोग हैं। 7 प्रतिमाधारी 11 हैं। दो प्रतिमाधारी कितने हैं? संकल्प जिनका हो चुका हो वो कितने हैं? दो प्रतिमा का संकल्प ले चुके हैं, आचार्य श्री से संकल्प ले आए हूँ, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारी प्रतिमाधारी, संकल्पित प्रतिमाधारी इस शिविर में आए नहीं हैं लगता है। और अभ्यास में रहने वाले कितने हैं? अभ्यास में रहने वाले, अभी संकल्प नहीं किया है और हमें अभ्यास करना है, अभ्यास में बहुत सारे लोग हैं। आप अभ्यास करने वालों को आगे बढ़ना है ना? हाँ, आपके लिए सभी स्वरूप समझाया जाएगा। इस शिविर में प्रश्नोत्तर जब चलते हैं तो उस समय प्रश्नोत्तर के साथ साथ अपन प्रतिमाओं का स्वरूप भी समझ सकते हैं। सुबह की कक्षा में केवल ध्यान का हम अभ्यास करेंगे और ध्यान के माध्यम से हमारी आत्मा को ऐसा संस्कारित करेंगे जैसे एक मुनि जीवन होता है, मुनिचर्या होती है। मुनिचर्या क्या होती है और कितनी निर्मलता उसमें होती है वही अनुभव अपने जीवन में लेना है, तो ऑटोमेटिक मुनि बनने के भाव आएंगे और आप लोगों को आरिका बनने के भाव आएंगे। आरिका जीवन क्या होता है, कैसे होता है, लगभग मुनि के निकट जीवन ही आरिका जीवन है, लगभग, पूरा नहीं। सबसे पहला संकल्प एक हो गया, क्या किया अपन ने? 5 दिन के लिए यहाँ से छोड़कर कहीं भी हिलेंगे नहीं, कुछ हो जाए तो छोड़कर के तो आए हैं, यहाँ पर केवल मोह छोड़ना है, घर वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, बाद में जाओगे ना उसी जगह मिलेगा जहाँ वो है, वहाँ से कहीं भागेगा नहीं वो, अचेतन परिग्रह उसके हाथ पांव नहीं हैं जो भाग करके चला जाए, वो वहीं रहेगा। आप मोह छोड़ेंगे तो बैंक में पैसा कम होगा क्या? नहीं होगा, उतना ही रहेगा ना, बढ़ेगा, मोह छोड़ने से तो बढ़ेगा, और बढ़ा क्या नहीं बढ़ा जा कर के देख लेना। बता दे सभी को, बता धन न घटेगा न बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु बढ़ने के लिए जो रखा है उतना तो बढ़ेगा ही, पांच दिन में जितना ब्याज आया वो तो उतना तो बढ़ेगा। हमने ध्यान किया मोह छोड़ा ये कह करके तत्काल बैंक में कुछ राशि बढ़ गई हो, ऐसा आप नहीं पा सकते, क्योंकि कर्मों में भी यह शक्ति नहीं है कि अभी यहाँ पर धर्म का कार्य कर लो और जा कर के देख लो, एक हाथ से दो और एक हाथ में देख लो कि कितना बड़ा है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा तो एक बीज भी नहीं उगता। खेत में गए अभी बो करके आए और दूसरे दिन जा करके उग रहा है कि नहीं उग रहा है, खोद करके देखा तो कल के जैसा ही दिख रहा है, बीज भी नहीं उगता, इतना जल्दी फल नहीं देता वो, अंकुरित नहीं होता। फल देने के लिए तो बहुत समय लगेगा, पर अंकुरित होने के लिए भी समय लगेगा, उसको आभादा काल कहते हैं, और फल मिलने का काल वहां से शुरू होता है। बीज उग गया मतलब सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया ये फल देने की संभावना अब रखता है। तो चार दिन कम से कम लगते हैं कि नहीं, एक बीज को उग करके अंकुरित होने में चार दिन लगते हैं। पर किसान यदि ऐसा विचार करे तो बीज को तो हमने बो लिया और दूसरे दिन ही जाकर के देखने का कोशिश कर रहा है कि फल दे रहा है कि नहीं दे रहा, अंकुरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या मिलेगा? दूसरे दिन देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ एक बीज डाला था एक ही बीज मिलेगा। तो ऐसा बैंक का भी पैसा है, बाद में बढ़ेगा, चिंता मत करो। समय लगता है उसमें, धर्म करने वाले के पीछे लक्ष्मी चलती है, वैभव चलता है, चिंता मत करो। उधर मुड़ करके भी देखने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप बढ़ता है। पुण्य अपने पास है तो जहां हाथ डालो वहां पर आप सक्सेस हो जाते हैं। पुण्य यदि साथ में है तो पुरुषार्थ भी अवश्य चाहिए पड़ता, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पुण्य बंद होने पर पुण्य का फल तत्काल मिले ये संभव भी नहीं। कितने ही लोग ऐसे सोचते हैं, इतने साल तक धर्म किया, कर्म किया, और करते करते मेरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन धर्म करने से संपत्ति तो मिलती है ये कहा था, तो आज तक हम संपत्तिवान नहीं बन पाए, तो धर्म के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। ऐसे भी लोग रहते हैं कि नहीं, धर्म का रास्ता झूठा है, धर्म करने से कैसे संपत्ति बढ़ सकती है? दुकान में बैठना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उस माध्यम से पाप करके उस माध्यम से धन संग्रह करना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। वास्तव में वो धारणा सही है क्या गलत है? वो गलत है। धर्म पर से अगर विश्वास उड़ गया तो भव भव में हमें दरिद्र ही रहना पड़ेगा, और धर्म पर अगर विश्वास है तो देर है पर अंधेर नहीं है। धर्म के क्षेत्र में देर होती है पर अंधेर कभी नहीं होता। समय लगता है, फल मिलता है, पर फल मिलने के काल में पुरुषार्थ भी आवश्यक होता है। कोई कोई जीव ही चक्रवर्ती बनते हैं और सभी नहीं बन पाते, कोई कोई जीव ही तीर्थंकर बन पाते हैं सभी नहीं बन पाते, इसमें क्या रहस्य है? कोई झूठ मूठ बोल करके चक्रवर्ती बनना पड़ता है क्या? पहले आर्यखंड को जीत लिया, झूठ मूठ बोलकर विजय प्राप्त कर लिया, फिर उससे भी ज्यादा झूठ बोलने के लिए फिर म्लेच्छखंड में गए। ये व्यापारी धंधा है क्या चक्रवर्ती बनना? नहीं, ये पूर्व पुण्य होता है। पूर्व पुण्य के कारण से सामने वाले जीव शरण में आते हैं, शरण मांगते हुए आप महान हैं, आप बड़े हैं, ये संपत्ति आपकी है और आप हमारे हैं, आप और हम में कोई अंतर नहीं, आप हमारे परिवार के हैं कह करके अपनी संपत्ति को उनका समझते हैं। तो चक्रवर्ती भी कहता है अपने परिवार के हो, तुम्हारी संपत्ति हमारी कैसी हो सकती है, ये तुम्हारी ही रहेगी। क्या साथ में ले आते हैं? क्या अधिकार रखते हैं? नहीं। पुण्य का फल मिलता जा रहा है, दिग्विजय होता जा रहा है, लेकिन चक्रवर्ती सदा जागृत रहता है। महापुरुष है ना, पूर्व भव में कई बार मुनि बने हैं, आत्मा के संस्कार हैं, मूर्छा भाव नहीं रहता है चक्रवर्ती को। पर वस्तु है, पर वस्तु में असली सुख की उपलब्धि नहीं है, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को पता रहता है। इसलिए मूर्छित नहीं होता, विवेक ज्ञान है वहां। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं रहता। मिथ्या दृष्टि जीव ये सोचता है सबको लूट के ले जाऊं, ये सोचता है, और चक्रवर्ती क्या सोचते हैं, मैं लूट के नहीं ले जाऊंगा, मैं लूट कर ले जाने के लिए यहां नहीं आया हूं, केवल आया हूं आपको अपना बनाने के लिए। आप अपने हैं ये कह दिया तो व्यक्ति सामने वाला भी मन बना लेता है। आप जब ये कह रहे हैं कि आप अपने हैं तो हम भी अपने हैं, और दो चेतन आत्मा अपने अपने परिवार के हो गए, परिवार के संबंध से अगर जुड़ गए तो संपत्ति तो संपत्ति है, समान परिणाम वालों को संपत्ति पर संपत्ति है। कोई भी लूटपाट करने का और छीन कर ले जाने का प्रयास क्यों करेगा? कोई भी म्लेच्छखंड का राजा चक्रवर्ती से लड़ता नहीं है, चक्रवर्ती को शरण में आता है, सम्मान करता है। आप जैसे महान राजा अपने भूमि पर आ गए, हमारा भाग्य धन्य, हमारा धन्य भाग्य, स्वागत करता है। और वो संपत्ति जितनी उनकी रहती है उस संपत्ति से प्रभावित होता है ऐसा नहीं, बल्कि उनका पुण्य प्रभावित कर रहा है। वह पुण्य सामने वाले को ऑटोमेटिक झुका देता है, शरण में आने लायक बना देता है, दोनों को एक कर देता है। कितना प्योर शुद्ध पुण्य होगा वो? पुण्यानुबंधी पुण्य का काम यही तो है। पुण्यानुबंधी पुण्य व्यक्ति के पास होता है तो झगड़ा नहीं कराता। महाराज फिर बाहुबली चक्रवर्ती के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? तो कदाचित होता है, परंतु इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं रहता। चारित्र मोहिनी प्रकृति के उदय से, अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से यदि भले ही परस्पर में झगड़ा झंझट थोड़े समय के लिए बन जाए, ये शाश्वत नहीं रहेगा, अविवेक के साथ नहीं होगा। भौतिक सुख ही असली सुख है ये दोनों जानते हैं, लेकिन बीच में जो झगड़ा हो रहा है ये क्षणिक झगड़ा है, शादी शांत वाला है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय में जो झगड़े होते हैं वो अनादि शांत होते हैं। झगड़े भी दो प्रकार के, अनादि शांत वाले झगड़े और शादी शांत वाले झगड़े। और सम्यक दृष्टि जब किसी बात की झगड़ा करता है तो कैसा करता है, शादी शांत क्या अनादि, शादी शांत, वो समझ शादी क्यों, वो उसको समझदार है, सम्यक दृष्टि समझदार है। झगड़ा भी करेगा तो कुछ समय के लिए करेगा, शाश्वत समय के लिए नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसका ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है। जिसके लिए हम झगड़ते हैं वो शादी शांत है, तो हमारा झगड़ा भी शादी शांत क्यों ना हो, ये संपत्ति शादी शांत है या अनादि शांत है। अपने हिस्से में जो मिला है मिला है, शादी हो गया और मरण के पश्चात रहने वाला नहीं है, ये अंत हो गया, तो संपत्ति शादी शांत है, तो इसके पीछे हमारे जो झगड़े होना चाहिए वो कैसे रहना चाहिए, शादी शांत, झगड़े भी शादी शांत होना। और मिथ्या दृष्टि क्या समझता है, ये पर वस्तु ही असली सुख का कारण है, वो बहिरात्मा ही, बहिरात्मा के विचार ऐसे रहते हैं कि पर वस्तु में ही सुख है, आत्मा का सुख असली सुख है ऐसा ज्ञान ही नहीं रहता है। तो वो क्या सोचता है, यही सुख है तो इसको छोड़ना नहीं, ये अनंत काल तक रहे हमारे साथ, ये रहेगा या नहीं रहेगा ये भी विचार नहीं करता, परंतु ये रहेगा ऐसा कह कर के तो लड़ता है, इसका झगड़ा अनादि अनंत काल तक भी चल सकता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय जीव को अनंत काल तक दुख देती है ना। और उस ज्ञानोपयोग को पलटाने वाला जो मिथ्यात्व कर्म है, यह मिथ्यात्व कर्म भी ऐसा जीव के ज्ञानोपयोग को पलटा देता है ना, जो उल्टा विश्वास करा देता है। आत्मा का सुख ही असली सुख है ये ज्ञान नहीं कराता मिथ्यात्व, मिथ्यात्व ये ज्ञान कराता है भौतिक सुख ही असली सुख है, उसी को पाओ, उसी के पीछे भागो, जितना मिले उतना अच्छा, जितना संग्रह कर लो उतना बढ़िया, उतना ही बड़ा बनोगे और बनते बनते एक दिन तुम चक्रवर्ती बनोगे, चक्रवर्ती बनने का कोशिश करो, ये प्रेरणा देता है। मिथ्यात्व के उदय में जीव की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है, और अनंतानुबंधी कषाय उस अनंत रूप मिथ्यात्व को बांधने में जो सहयोग करती है उस कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंत संसार को बढ़ाने में ये दो ही तो कर्म है ना, इसलिए इसको अनादि अनंत कहा, और यदि छोड़ना चाहो तो अनादि ये शांत हो जाएंगे, अनादि काल से थे आत्मा के साथ, यदि हम छोड़ना चाहे ये छूट भी सकते हैं, इसलिए ये अनादि शांत भी हैं। भव्य जीव के लिए ये कषायें अनादि शांत हैं, और अभव्य जीव के लिए ये दोनों कषाय अनादि अनंत हैं। और बुद्धि अनादि शांत होगी क्या, नहीं, ज्ञानोपयोग अनादि अनंत, भौतिक सुख ही असली सुख है, इसके बिना मैं नहीं हूं और मेरे बिना ये नहीं है, यही असली सुख है। ये असली सुख की जो परिकल्पना है पर पदार्थों में, ये मिथ्या दृष्टि जीव को ही होती है, ये परिकल्पना मिथ्या दृष्टि जीव की परिकल्पना है, सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं होता, और यदि होता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, और यदि सम्यक दृष्टि है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कैसा होता है, देखो अपने अपने टटोलो, अंदर आत्मा को टटोलो, कैसा लगता है, भौतिक सुख ही सुख है ऐसा लगता है, नहीं लगता? कितने लोगों को नहीं लगता? भौतिक सुख ही सुख है ऐसा कितने लोगों को नहीं लगता? यानी शेष लोगों को लग रहा है कि इसको क्यों छोड़े, भौतिक सुख ही असली सुख है। नहीं, भौतिक सुख में सुख नहीं होता। सुख जो मिलता है और सुख जो होता है वह आत्माश्रित है, पर पदार्थों में सुख नहीं होता, पर पदार्थों में सुख है भी नहीं। सुख की अनुभूति करने वाला कौन है? आत्मा है ना। क्या वस्तु है? सुख के वस्तु के द्वारा आत्मा सुखी होता है ये जरूर है, पर पदार्थ आत्मा को सुख देने में निमित्त बन सकते हैं, परंतु पर पदार्थों से उत्पन्न जो सुख है वो सादि शांत है क्या अनादि अनंत है? महाराज यही समझ में आता है कि ये क्या है शब्द सादि शांत सादि अनंत क्या है समझ में नहीं आता। देखो, आपने अनादिकाल से आज तक अध्यात्म तत्व की चर्चा की नहीं है तो एकाएक पहले दिन में ही थोड़ी समझ में आएंगे ये शब्द। आप बैठो पांच दिन कम से कम यहाँ सुनो। जो नए लोग हैं ना उनको तो ये शब्द ऊपर से ही जाते होंगे। प्रतिमाधारी तो परफेक्ट हो गए क्योंकि बहुत समय से इनका इनकी साधना भी चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, चिंतन मनन चल रहा है, आत्मा और पर वस्तु का चिंतन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और यही करना है जीवन में, क्या करना है? एक ही काम है, मैं अलग हूँ पर वस्तु अलग है, मैं अलग हूँ पर वस्तु अलग है। इसका संग्रह व्यर्थ है, व्यर्थ, सर्वथा व्यर्थ। और जीवन जीने के लिए, प्राणों को टिकाने के लिए जितना चाहिए उतना कमा लिया और बस आत्मा की साधना में डूब गई। इससे बड़ा धर्म श्रावक अवस्था में कुछ भी नहीं है। अनंतों जीव हैं, स्वर्ग में देवता हैं, त्रिरंच गति में अनंत त्रिरंच प्राणी हैं। सबसे ज्यादा संख्या तो जीवों की त्रिरंच गति में ही है। अनंतानंत जीवों का भंडार, खजाना है त्रिरंच गति। मोक्ष जाने वाले जीव वहीं से तो आते हैं। संसार से मुक्त होने वाले जीव मूल स्थान वही है, वहीं से आते हैं और मनुष्य पर्याय पाकर मोक्ष जाते हैं। सबसे सस्ता यदि कोई गति है, कौन सी है? त्रिरंच गति। त्रिरंच गति कहीं भी नहीं जा पाए तो लास्ट में अपन कहाँ रहते हैं? त्रिरंच गति। तीन गति हमारे लिए यदि शरण नहीं देते तो त्रिरंच गति ने पहले से कह के रखा है तुम्हें कोई शरण नहीं देता है तो मेरे पास लौट के आना, ऑलवेज वेलकम बोर्ड लगा हुआ है। हम कहाँ से आए हैं? त्रिरंच गति से। अपना मायका, माइक नहीं मायका, अपना मायका कौन सी गति है? त्रिरंच गति। इसी त्रिरंच गति से हम आए हैं, हम अतिथि हैं। मनुष्य गति के लिए तो हम अतिथि कहलाते, मनुष्य गति ने हमें स्वागत किया है, आओ। बहुत बड़ी सुधार आपके भीतर हो चुका है इसलिए हम स्वागत करते हैं, आ जाओ और यहाँ पर रहो, कुछ समय के लिए रहना, अतिथि हो। तुम्हारा मायका नहीं है ये। बहू यदि पति के घर चली गई और वहाँ झगड़ा हुआ, झंझट बहुत हो गए और वहाँ से डिसमिस कर दिया गया तो कहाँ जाती है? मायके। त्रियांशी गति तो पति का घर मनुष्य गति, जो कुछ उत्थान करना चाहो तो पति के घर से हो सकता है, और मायके में कोई उत्थान नहीं कर सकते क्योंकि वो एकेंद्री पर्याय है ना, मायके में कुछ नहीं कर सकती। और पति के घर में जाकर के और अच्छी तरह से व्यवहार निभ गया, अच्छी तरह से संसार चल गया, तो सारे विकास वहीं से शुरू होते हैं। और फिर हमारा संसार आसपास में बस जाता है। पहले पति पत्नी दो रहते हैं और बच्चे पांच बन जाते हैं, तो अपने आसपास में पांच बच्चे उनको संभाल लेते हैं और उसमें दो पुत्रियां हैं और उन पुत्रियों को हम मायके का प्रदान करते हैं। हम त्रियंश गति हो जाते उस समय बच्चे पैदा हो गए तो हम त्रियंश गति में आ गए, हम मायका बन गए, और अपने बच्चे बाहर जाएंगे, पति के घर जाएंगे, वो मनुष्य गति में जाएंगे। तो मनुष्य गति तो वैसे ही साधी शांत है, अनादि से हमको मिला नहीं है। उपलब्ध जो गति थी अनादिकाल के पीछे त्रियंश गति थी, निगोद में थे हम सभी, ये मालूम है कि नहीं कि कहाँ थे हम, कहाँ थे? निगोद में। चार गति में से दो इंद्रिय पर्याय भी, दो इंद्रिय पर्याय भी अनादि पर्याय नहीं हमारी, वो भी सादी शांत वाली पर्याय। दो इंद्रिय पर्याय सादी शांत, तीन इंद्रिय पर्याय सादी शांत, चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी सभी त्रियंश की पर्याय सादी शांत, मनुष्य गति सादी शांत, देव गति सादी शांत, नरक गति सादी शांत, ये मिलते हैं छूट जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद नहीं छूटता है ऐसी भी एक गति है, जो ये बात बताया जाता है केवल ज्ञानी समझाते हैं। जीव अनादिकाल से था, अनादिकाल से वही है और अनादिकाल तक निकलेगा ही नहीं, ऐसे जीव भी हैं, ऐसे निगोद पर्याय भी है। तो अनादि अनंत पर्याय उसके उस जीव के साथ में है। हो सकता है वो जीव भव्य हो, अभव्य हो, ये कोई जरूरी नहीं। अभव्य जीव चारों गति में रहते हैं, भव्य जीव भी चारों गति में हैं, लेकिन निगोद अवस्था की उस पर्याय में ऐसे जीव भी हैं जो अनादि काल से भव्य होकर वहीं थे, वहीं हैं और अनादि अनंत काल तक निकलेंगे नहीं, वहीं रहेंगे। हाँ? नहीं, उसको नाम तो नहीं दे सकते, दूरानदूर भव्य कोई शब्द आगम में आता नहीं है, हम नामकरण नहीं करेंगे, तो उसको संख्या की अपेक्षा से ऐसा नामकरण कर सकते हैं कि वह अनादि अनंत पर्याय वाला जीव, जिसका संसार काल अनंत काल से था, है और रहेगा, वैसा जीव। जीवों के पांच भेद हैं, भव्य जीव चार प्रकार के और अभव्य जीव एक ही है, उसके कोई प्रकार नहीं होते। और ये अभव्य जीव चारों गति में हैं, नित्य निगोद में भी हैं, इतर निगोद में भी हैं, चारों गति में भ्रमणशील हैं। निगोद में रहने वाले ये अभव्य जीव चारों गति में हैं, इसी प्रकार भव्य जीव भी चारों गति में हैं, नित्य निगोद में भी हैं, इतर निगोद में भी हैं। परंतु टोटल जीवों के जो भेद हैं वो पांच प्रकार के, एक अभव्य जीव, एक जीव वह जो भव्य जीव है, मोक्ष जाने की पात्रता रखता है, पात्र है, वह संख्यात काल से मोक्ष जाने वाला, जिसका संसार काल संख्यात काल में समाप्त होना है, सादी शांत संसार काल जिसका है, वो भव्य जीव, दूसरा ये निकट भव्य। हम नामकरण बाद में करेंगे, काल की अपेक्षा से इन भव्य जीवों का विभाजन करते हैं। संख्यात काल से मोक्ष जाने वाला जीव, असंख्यात काल से मोक्ष जाने वाला जीव, इसका संसार काल कितना? असंख्यात। इसका कितना? संख्यात। और अनंत काल से मोक्ष जाने वाला जीव, अनंतानंत काल तक जाते ही रहेंगे, और अनंतानंत काल तक न जाने वाले जीव भी तो हैं जिनको जाना ही नहीं कभी, ऐसे जीव भी हैं। और जिनको जाना है अनंतानंत काल तक, वो तो भव्य हैं ही, अनंतानंत काल के बाद भी वो जा सकते हैं, ऐसे भव्य जीव भी हैं। पर जो जाएंगे ही नहीं, ऐसे जीव अलग हैं जिनका संसार काल अनंत अनादि अनंत है, ऐसे जीव भी हैं, उसमें भव्य भी शामिल हैं और अभव्य भी। ये संसार का, संसार के भीतर जो जीव राशि है, इसी में से तो मोक्ष जा रहे हैं। अनंत काल से गए हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे, सही है ना? और ये संसार तब भी खाली होने वाला नहीं है, ये भी सही है ना? मोक्ष जाने वाले जीव सदा रहेंगे, अनंतानंत काल के बाद भी, बिल्कुल अनंतानंत काल के बाद भी। तो जीव राशि कितनी है? अक्षय अनंत खजाना है, अक्षय अनंत का खजाना है। अक्षय यानी जाते जाते कभी खाली ना हो, क्षय ना हो, ऐसा जीवों का खजाना है। अक्षय अनंत काल तक जाएंगे, जाते रहेंगे, किंतु संसार काल किसी के लिए संख्यात काल का है, किसी के लिए असंख्यात काल का है, किसी के लिए अनंत काल का है, किसी के लिए अनादि शांत काल होकर अनंत काल में है, और किसी का अनादि अनंत काल तक भी है। और उस जीव का देखो कभी, जो जीव जाने वाला नहीं है भव्य होकर के भी, वो अभव्य संभव्य, निमित्त मिलने पर भी नहीं जाएगा, अभव्य संभव्य कहा है उसको। उसका संसार काल अनादि अनंत है, और इसके साथ अभव्य जीव को भी जोड़ दो, इसका काल भी अनादि अनंत है। उसमें से हम कौन हैं? इन सब में से अपने आप को फिट करो, किसी सीट पर बैठ जाओ, हैं? संख्यात काल कहना आसान है, शिविर में पता चलेगा, पसीना आएगा। यहाँ अपन 5 दिन मौन नहीं रह सकते और अपने आप को संख्यात काल कह रहे हैं। कितना मोह छोड़ना पड़ता है, बोलने की भी इच्छा न होना, ये निकट भव्यत्व का प्रतीक है। संसार अच्छा ही जिसको नहीं लगता, अभी मोक्ष जाऊं, अभी मोक्ष जाऊं, और साधना में जुट जाता है, साधना में रत हो जाता है, साधना के प्रति जिसको ज्यादा रुचि रहती है, उसी जीव को हम निकट भव्य कह सकते हैं। संख्यात काल से मोक्ष जाने वाला निकट भव्य आत्मा। अपने को कितनी कषाय होती हैं, हम अपनी आत्मा के कषायों का ऑपरेशन करना हम अभी भी नहीं जानते हैं, तो अपने आप को हम निकट कैसे कह सकते हैं? जिसकी कषायें अत्यंत मंद है, कषाय इधर हो गई और इधर छूट गई, घर नहीं करना चाहिए। और हम वैर विरोध बांध करके रखते हैं, मन में गांठ बांध करके रखते हैं, देखूंगा बाद में। अपन निकट भवी हैं क्या? ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को निकट भवी नहीं कह सकते, क्योंकि कषायें भव भव में चलती हैं। वैर इस भव में भी रहता है, परभव में भी रह सकता है कि नहीं? कमट का और पार्श्वनाथ का चरित्र पड़ा है कि नहीं? कितने भव तक वैर विरोध रहा? 10 भव तक। और पार्श्वनाथ का, उनको तो कोई वैर था भी नहीं, है भी नहीं, क्षमा भाव में ही थे वो। लेकिन क्षमा भावी को भी कषायी जीव छोड़ता नहीं, बदला लेने का प्रयास करता है, बैठे बैठे वही करता है वो। कुछ काम नहीं है ना, एकदम हाईएस्ट पॉलिटिक्स क्षेत्र पर जीवन जीता है वो। पॉलिटिक्स जीवन। क्षमावान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता है वो, इतनी तीव्र कषाय रहती। इसी कषाय की पहचान है वैर। वैर किसका नाम है? जो बदला लेने का भाव भीतर रखता है उसका नाम वैर है। और यह जीवात्मा, इस जीवात्मा का संसार काल जो होता है वो कितना होता है? साधी शांत होगा क्या? नहीं, ये कषाय को अनादि अनंत ही बनाना चाह रहा है। और कभी बुद्धि आ जाए कि कषाय तो हमारे लिए दुख का कारण है, अब वैर करना छोड़ दो, तो मजबूरी में वैर छोड़ देता है। मजबूरी में वैर को छोड़ना पड़ता है, अब कषाय नहीं करूंगा। ऊपर से बार बार मार पड़ गई तो अब वैर बदला लेने का कोई साधन नहीं रहा, तो उतने समय के लिए वैर छोड़ देता है, लेकिन बाद में तो देखूंगा ही देखूंगा अगर अवसर मिले तो। ऐसे और परिणाम रहते हैं। ऐसे अगर परिणाम नहीं रहे, वहीं खत्म कर दिया तो कर दिया, कर भी सकता है वो, खत्म हो गया, कर भी सकता है। और नहीं करता है तो नहीं भी करता है, आगे बढ़ा देता है। कोर्ट का मालिक तो वही है, केस को आगे बढ़ाना या केस को खारिज करना, वो खुद ही मालिक है उसका। इसी कषाय परिणति को समझ करके अपने को ये संकल्प करना है, आत्म कल्याण का रास्ता मिला है हमको, जिनवाणी मिली है, गुरु मिले हैं, तो अपने कषाय का ऑपरेशन इसी समय में करके हम अलग क्यों ना कर दें? ऐसा समझकर, ऐसा चिंतन करके, जो इसी वक्त कषाय को समाप्त कर देता है, वैर को समाप्त कर देता है, मान को समाप्त कर देता है, मोह को समाप्त कर देता है, क्रोध को समाप्त कर देता है, मायाचारी को छोड़ देता है, उसको हम निकट भव्यात्मा कह सकते हैं। ये चार कषायें पुद्गल वस्तु के कारण से ज्यादा नहीं होती। पुद्गल वस्तु तो निमित्त है, पर उस निमित्त को सामने रखकर दूसरे से टैली करके कषाय करता है। अगर संसार में आप अकेले होते, सोचो एक मिनट के लिए सोचो, अकेले होते और कोई एक भी जीव ना होता तो कषाय होती? किसके साथ करोगे कषाय? पुद्गल तो बोलता नहीं, मौन है, और मौन व्यक्ति के साथ ज्यादा कषाय कर ही नहीं सकता कोई। व्यक्ति भी अगर मौन हो गया तो उसके साथ कषाय नहीं होती ज्यादा समय तक। अरे ये बोलता ही नहीं है, इसको क्या गाली देना और क्या क्रोध करना और क्या गुस्सा करना, चलो चलो चलो, यहाँ पागल है ये, पागल समझ करके वो निकल जाता है व्यक्ति को, पागल समझ के चला जाएगा, क्रोध छोड़ देगा वो, ज्यादा समय तक कर ही नहीं सकता। पुद्गल तो अनादि अनंत का मौन है उसका। पुद्गल वस्तु आपसे बोलता नहीं, और पुद्गल वस्तु बोलने लग जाए तो उस दिन से इसके साथ भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। पुद्गल बेचारा मौन है, पुद्गल हंसता है, जब उसको निमित्त बना करके आप दो मिल करके झगड़ते, किसी दुकान को, किसी पैसे को, किसी घर को लेकर के एक एक इंच जगह के लिए आप झगड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कशाएं चलती हैं। ये पुद्गल वस्तु, ये धरती मुस्कुराती है, धरती हंसती है और व्यक्ति झगड़ते हैं। झगड़ते भी लोगों को देख करके धरती हंसती, धरती अचेतन है ना, पुद्गल वस्तु मूर्त पुद्गल है, वो पुद्गल वस्तु हंसती है और व्यक्ति कोर्ट में झगड़ते हैं, तो श्रेष्ठ कौन है इसमें? अचेतन श्रेष्ठ है या चेतन श्रेष्ठ है, ये पूछते हैं तो आप कहते हैं कि चेतन श्रेष्ठ है, पर झगड़ने के लिए कोर्ट में पहुंच गए हैं दो व्यक्ति, और धरती जिसके वजह से झगड़ा है, केस पड़ गया है, वो धरती मुस्कुराती है, हंसती है, तो इस वक्त झगड़ने वाले दो वो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं कि धरती श्रेष्ठ है? धरती श्रेष्ठ, धरती को कोई कषाय नहीं, वीतराग है वो, चाहे शत्रु रहे चाहे मित्र रहे, मेरे छाती पर बैठ करके मेरा सदुपयोग कोई करे दुरुपयोग कोई करे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक निर्विकार निर्मल वीतरागी मुनि रहते हैं उपसर्ग के काल में, वैसी धरती है। इसलिए उत्तम क्षमा को धरती की भी उपमा दी गई। धरती कैसी है? धरती धरती है, उत्तम क्षमा का रूप है। तो ये उत्तम क्षमा को धारण करने वाली धरती है क्या? वस्तुतः चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा ये तो पुद्गल है, पुद्गल वस्तु को दशधर्म प्राप्त नहीं होते, पर पुद्गल वस्तु का मोह छोड़ने पर चेतन आत्मा को उत्तम दशलक्षण धर्म प्राप्त हो जाते हैं। समय खिसक गया, अब अपन सभी 5 दिन की इस यात्रा में बहुत अच्छी तरह से साधना करेंगे। आपका 5 दिन का मौन अखंड रहे अपेक्षा रखेंगे हम, ये समझ करके चलना है मैं अकेला ही हूँ, मेरे आसपास में भी कोई नहीं है, सबके बीच में रह करके भी अपने आप को अकेला समझ के चलना। मैं आत्म साधना के लिए आया हूँ, मैं अकेला हूँ, केवल 24 घंटा यहाँ आत्मा का ही चिंतन करना है, अपने को अकेला समझना है, 5 दिन अकेला समझो, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। और इस शरीर को टिकाने के लिए एक बार आहार आप लेने जाते हैं तो जैसा भी मिले, जिस रूप में मिले, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, उसमें मुनि के समान समता रखकर उसको स्वीकार करें। वहाँ कषाय न उत्पन्न हो, वहाँ विकल्प न उत्पन्न हो, विकल्प भी नहीं करना, ठीक है? ये संकल्प लेंगे ना, हाथ उठा। यह साधना कितने लोग कर रहे हैं? अंतरंग से करना पड़ेगा, महाराज ने कहा इसलिए हाथ उठाना पड़ रहा है और हमको करना पड़ रहा है। एक मशीन की तरह काम मत करो, मैंने स्विच दबाए तो मशीन शुरू हो गई, दबाए तो बंद हो गई, ऐसा हम मशीन को हैंडल नहीं कर रहे हैं। आप सभी चेतन आत्मा हैं, मशीन नहीं, आप अपने लिए करें, अंतरंग से करें। कषाय को छोड़ने का हमें संस्कार लेना है, किस प्रकार से कषाय छूटती हैं, पर वस्तुओं को अपना मान रखा है, अनादिकाल से अनादि अनंत काल व्यतीत हुआ, हम अकेले नहीं हो पाए, अनेकता में रहे, एकत्व भावना को भाकर एकता में नहीं आ पाए। अपने आप को अकेला करने वाला व्यक्ति कभी भी हर्ष विषाद नहीं कर सकता। अगर अकेला हो गया ना, अपने लिए समर्पित हो गया 5 दिन के लिए, तो आप नियम से इन सभी गुणों के धारी रहेंगे, सहिष्णुता आपके साथ चलेगी, सहनशीलता और समता ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। समता रखने के लिए क्या करना? एक ही सूत्र है, अपने आप को अकेला बनाओ, समता आ जाएगी। अपने आप को अकेले बनाओ, मैं अकेला हूँ, शिविरार्थी जो भी मिल करके आए हैं हम भी अलग अलग हैं, मेरा कोई नहीं यहाँ, मैं आत्म साधक हूँ, अकेला हूँ, गुरु जो निर्देशन दे रहे हैं उतना ही मुझे काम करना है, अपने में करना है, अपने लिए करना है, समर्पित होकर के करना है। 5 ही दिन की साधना है, ज़्यादा दिन तो है ही नहीं। हाँ, 5 दिन घर छोड़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसका पूरा का पूरा 100% फल मिलना चाहिए, नहीं तो आना बेकार हो जाएगा ना, फिर आते ही क्यों। आत्म साधना नहीं करना है तो फिर 5 दिन आना जरूरत भी क्या है। और फिर ऐसी हो तो हमारी कषाय अनादि अनंत रहेगी, उसको कहीं विराम लगाने का संस्कार नहीं आएगा, और विराम तो लगाना है अपने को। कषायों को विराम लगाने के लिए हमें ये कला सीखनी है, और इस कला को अपने जीवन यात्रा में, घर में, यानी पूरी आयु में, जिंदगी में हमें मंद कषायी होकर, कषाय रहित होकर जीवन जीने की शैली सीखना है। ये जीवन जीने की अपूर्व शैली केवल जैन दर्शन ही दे सकता है, और उसमें भी जो इससे परे उठ चुके हैं वो सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, अन्यथा अपनी कषायें कभी हम जीत नहीं सकते और काबू में नहीं आ सकती। अब जैसे भी आप लोगों की व्यवस्था है, ये व्यवस्था के संबंध में तो हम नहीं कहेंगे, बाहरी जो व्यवस्था है इनके रहने की पूरी ध्यान रखना है, जो यहाँ जिम्मेदारी लिए हैं शिविरार्थियों का उनका देखभाल करना है। आपको किसी भी प्रकार से वो संकेत नहीं करेंगे कि ये हमारे पास कमी है, पर क्या कमी है आपको ही ध्यान रखना है, पूछ करके नहीं करना है, पूछे बिना ही करना है व्यवस्था। ये बड़ा धार्मिक सेवा है, धर्मात्माओं की सेवा है, और धर्मात्माओं की सेवा आप मन लगा करके करें, ये भी कम नहीं है, सेवा भी धर्म है, और इससे भी महान पुण्य का बंध होता है। पुण्य हमें नहीं चाहिए, पर महान कर्म की निर्जरा जरूर होती है आपकी, धर्मात्माओं की सेवा से कर्म की निर्जरा अवश्य होती है, और भावों में निर्मलता आती है, आत्मा का कल्याण इसी से होता है। अब प्रश्न ये भी है कि स्थानिक लोग जो इसमें बैठे, कितने लोग हाथ उठाएं, स्थानिक लोग शिविरार्थी बनकर के शिविर में बैठे हों और फार्म भरे हों, उन्हीं के लिए मात्र पूछ रहे हैं, जिन्होंने नहीं फार्म भरा है उनके लिए नहीं। फार्म कितने लोगों ने भरा है, केवल यहाँ 2 ही लोग दिख रहे हैं फार्म भरे हुए। तो फार्म भरे हुए इन 2 के लिए वही नियम लागू रहेंगे जो इन लोगों के लिए है, और यदि आप सेवा करना चाहते हैं और वो करना पड़ता है, जरूरी है, तो आपके लिए छूट है, आप इनकी सेवा में रहे, कोई कमी ना पड़ जाए, उनको कोई प्रतिकूलता उत्पन्न न हो जाए, वो प्रतिकूलता को भी सहेंगे, अनुकूलता को भी सहेंगे, परंतु ध्यान रखना है। हाँ, अनुकूलता लाने का प्रयास करेंगे, और आप क्या प्रयास करेंगे, प्रतिकूलता ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमको परीक्षा देने का अवसर मिले और हम पास हो जाएं। ये
घर जाएंगे क्या,
कौन
घर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, रहने वाले कौन रूम में रहेंगे,
स्थानिक शिविरार्थी। अच्छा, आपके लिए छूट है, केवल आपके लिए, बाकी के लिए तो वो सामान्य है, तो शिविरार्थियों के बीच में रहकर इनकी चर्या को आप अपना सकते हैं, जैसी इनकी रहेगी, जो आपके पास पत्रिका दी है उसमें जो नियमावलियां हैं वो आपके लिए सभी लागू होंगे, इन्हीं के बीच में रहिए, आप रह सकते हैं ना, हाँ रह सकते हैं तो रहिए, नहीं हो तो चर्चा करिए हमसे आकर के कि ये हमारे लिए प्रतिकूलता है, ठीक है। स्थानिक लोगों का हो गया, और बाकी जो यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं, सुनने के लिए कोई भी निषेध नहीं है, यहाँ की पूरी समाज यहाँ बैठ करके सुन सकती है, चाहे यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, चाहे सुबह का हो, चाहे मध्याह्न का हो, बैठ करके सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए आप समाचार पहुंचाएं इस समाचार को। ठीक
जी, बोले एक मिनट बैठे रहे, मात्र एक मिनट। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की।